नमस्कार। आज हम ना चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर एंड द वाटर साइकिल, इसके जो मुख्य विचार हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
हाँ बिल्कुल,
मकसद बस ये है कि इस अध्याय का एक रीकैप हो जाए और समझें कि ये गर्मी का बहना और पानी का घूमना, ये सब हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ मतलब किताबी बातें नहीं है, ये वो प्रोसेस है जिनसे मौसम बनता है, हमारा जीवन चलता है।
सही,
तो चलिए देखते हैं इस अध्याय में क्या बताया गया है, ये सब काम कैसे करता है असल में।
हाँ तो शुरुआत करते हैं हीट ट्रांसफर से। अब ये है क्या? ये बस गर्मी का मतलब थर्मल एनर्जी का ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ जाना है। पर इसके तरीके बड़े दिलचस्प हैं। स्रोत में तीन मुख्य तरीके दिए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
हाँ, और अगर थोड़ा खोल कर देखें तो कंडक्शन जो है वो ज्यादातर सॉलिड्स में होता है, ठोस चीजों में।
अच्छा,
जैसे वो धातु की चम्मच वाला उदाहरण है ना, गर्म चाय में धीरे धीरे हैंडल तक गर्म हो जाती है।
हाँ हाँ।
इसमें होता क्या है कि पार्टिकल्स बस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी आगे पास करते जाते हैं, खुद नहीं हिलते। और मेटल्स जैसे कॉपर वगैरह वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गर्मी को आसानी से जाने देते हैं।
और वहीं पर लकड़ी है, प्लास्टिक है, हवा भी, ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ये गर्मी को रोकते हैं एक तरह से।
बिल्कुल,
स्रोत में ऊनी कपड़ों का जिक्र भी था। कमाल की बात है, वो खुद गर्म नहीं करते हैं ना, वो तो हवा फंसा लेते हैं बस।
हाँ बिल्कुल सही कहा, वो फंसी हुई हवा इंसुलेशन का काम करती है, हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ये बहुत आम गलतफहमी है कि ऊन गर्मी देता है।
अच्छा हाँ, ये तो है।
फिर दूसरा तरीका है कन्वेक्शन, ये होता है फ्लूइड्स में, मतलब लिक्विड्स और गैसेस में।
जी
अच्छा, जैसे पानी उबालते हैं तो होता है, या हीटर से कमरा गर्म होता है।
हाँ बिल्कुल वही, और जो जमीन और समंदर की हवाएं चलती हैं, लैंड एंड सी ब्रीजेस, वो भी इसी कन्वेक्शन से होती हैं, मौसम पर बहुत असर डालती हैं ये।
और तीसरा रेडिएशन, ये तो और भी कमाल का है।
हाँ,
इसके लिए तो किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती।
सही, सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है, अंतरिक्ष तो खाली है, वो इसी रेडिएशन से आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में।
अच्छा,
कोई भी गर्म चीज रेडिएशन छोड़ती है, बस मात्रा अलग अलग होती है।
और हमारे थर्मस फ्लास्क जैसी चीजें वो इन तीनों ही तरीकों को रोकती है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, सबको कम करती हैं।
हाँ बिल्कुल, डिजाइन ही ऐसा होता है।
तो ये जो हीट ट्रांसफर है, खासकर सूरज की रेडिएशन और हवा का कन्वेक्शन, ये सीधे सीधे पृथ्वी के एक और बड़े सिस्टम को चलाता है।
हाँ,
पानी का चक्कर,
वाटर साइकिल,
स्रोत में इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा गया है।
हाँ, ये पानी का पृथ्वी पर कभी न खत्म होने वाला सफर है, शुरू होता है इवेपोरेशन से,
मतलब सूरज की गर्मी से पानी का भाप बनना।
हाँ, लिक्विड से गैस यानी वाटर वेपर बनना, और फिर ट्रांसपिरेशन भी है।
अच्छा हाँ, पौधों से,
पौधे अपनी पत्तियों से पानी छोड़ते हैं भाप के रूप में। स्रोत में अमेज़न का जिक्र था, सोचिए वो जंगल रोज का 20 अरब टन पानी ट्रांसपिरेशन से हवा में छोड़ता है।
20 अरब टन, ये तो बहुत ही ज्यादा है,
है ना? फिर ये जो अदृश्य वाटर वेपर है, ये ऊपर जाता है, ठंडा होता है
और कंडेंसेशन होता है।
हाँ, भाप वापस पानी की नन्ही बूंदों या बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती है, और इन्हीं से बादल बनते हैं।
अच्छा, जब ये बूंदें या कण भारी हो जाते हैं
तो प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश, बर्फ, ओले, जो भी हो। और वो पानी फिर धरती पर या तो जमा होता है, कलेक्शन, नदियों में, झीलों में, समंदर में।
हाँ।
या फिर जमीन के अंदर रिस जाता है, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन।
हाँ।
और उसी से बनता है ग्राउंड वाटर।
और स्रोत ये भी साफ करता है कि ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे कोई नदी या झील नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो मिट्टी और चट्टानों के बीच जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनमें भरा होता है, स्पंज की तरह समझ लीजिए।
अच्छा हाँ, तो मतलब गीले कपड़ों का सूखना एवेपोरेशन है, सुबह घास पर ओस दिखना कंडेंसेशन है, नदियों का बहना रन ऑफ या कलेक्शन है, ये सब उसी बड़े वाटर साइकिल के हिस्से हैं।
बिल्कुल, रोजमर्रा की चीजें हैं ये सब।
तो इस पूरे अध्याय से ये समझ आता है कि हीट ट्रांसफर और वाटर साइकिल कितने गहरे जुड़े हुए हैं।
हाँ बहुत ज्यादा, सूरज की रेडिएशन से एवेपोरेशन होता है, कन्वेक्शन हवा और नमी को इधर उधर ले जाता है, फिर कंडेंसेशन के समय गर्मी निकलती है जो मौसम को और प्रभावित करती है।
ये प्रक्रियाएं मतलब लगातार चुपचाप हमारे आसपास चल रही हैं, मौसम बना रही हैं, हमें पीने का पानी दे रही हैं, पृथ्वी का तापमान संभाल रही हैं।
बिल्कुल, इनको समझना मतलब प्रकृति के संतुलन को समझना है एक तरह से, जल संरक्षण का महत्व भी समझ आता है।
सही कहा।
और यहीं पर एक जरूरी सवाल भी दिमाग में आता है, जिसका शायद स्रोत में भी इशारा हो, कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, उसका इन हीट ट्रांसफर और वाटर साइकिल की प्रक्रियाओं पर क्या असर पड़ रहा होगा, उनकी तेजी पर, उनके पैटर्न पर।
ये वाकई सोचने वाली बात है और शायद आगे जानने वाली भी। खैर, आज के इस विश्लेषण के लिए इतना ही।